परिशिष्ट एक वैदिक भाषा विशेषताएं। ऋग्वेद की भाषा आर्यों की सबसे प्राचीन साहित्यिक भाषा के रूप को प्रस्तुत करती है। यह लौकिक संस्कृत से अनेक रूपों में भिन्न है। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व पाणिनि ने लौकिक संस्कृत के जिस रूप को निर्धारित किया था वह रूप हजारों वर्षों के व्यतीत हो जाने पर भी आज विद्यमान है। परंतु वैदिक भाषा पर पाणिनीय व्याकरण के वे नियम समग्र रूप से लागू नहीं होते। यद्यपि पाणिनि ने वैदिक भाषा के संबंध में भी व्याकरण के नियमों को बनाने का प्रयास किया था परंतु वे उसको पूर्णतया नियमों में बांध नहीं सके। वैदिक भाषा के संबंध में अपवाद रहित नियमों को नहीं बनाया जा सका तथा बहुलम छंदसि कहकर रूपों की विविधता को स्वीकार करना पड़ा। वेदों की भाषा में संस्कृत भाषा की अपेक्षा व्याकरण की कुछ भिन्नता तो है ही, शब्दावली एवं संज्ञा रूपों की और भी अधिक भिन्नता है। संस्कृत जानने वाले व्यक्ति को वैदिक शब्दों के अर्थों को समझने में कठिनाई होती है और उन अर्थों को जानने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। शब्दों और धातुओं की संख्या, रूप, स्वर आदि की दृष्टि से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में बहुत से अंतर दिखलाई देता है। कुछ मुख्य अंतर यहाँ प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ध्वन्यात्मक विशेषताएं। वेदों की भाषा में स्वर और व्यंजनों की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो लौकिक संस्कृत में नहीं रही। क, स्वरगत ध्वन्यात्मक विशेषताएं। वैदिक शब्दों में स्वरों का उच्चारण संगीतात्मक है, अर्थात स्वरों का उच्चारण करते समय उनमें स्वराघात पर ध्यान रखना होता है। स्वराघात से शब्दों के अर्थों का निर्धारण होता है। लौकिक संस्कृत में ह्रस्व और दीर्घ दो प्रकार के स्वर के व्यवहृत होते हैं। इसमें क्रमशः एक और दो मात्राएं होती हैं। वैदिक संस्कृत में स्वरों के तीन प्रकार हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। प्लुत में तीन मात्राएं होती हैं और स्वर को अधिक लंबा करके उच्चारण किया जाता है। प्लुत को इस प्रकार लिखा जाता है, आसीत विंदती। वेदों में लृ स्वर प्रचुर प्रयोग है परंतु लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग प्रायः बंद सा हो गया था। अ, आ, ई, उ, री, ए स्वर यदि किसी शब्द के अंत में हो और उसके बाद किसी स्वर के होने पर संधि होने की संभावना हो तो अनुनासिक हो जाते हैं, जैसे 10.146.1 में विंदता। संहिता पाठ से ऊ को पद पाठ में ऊ इति उच्चारण किया जाता है। अनुस्वार और विसर्ग जो कि स्वर और व्यंजन की स्थिति रखते हैं उनका उच्चारण वैदिक भाषा की अपेक्षा लौकिक संस्कृत में भिन्न हो गया है। लौकिक संस्कृत के सिंह को वैदिक में सिवह उच्चारण किया जाना चाहिए। ख, व्यंजनगत विशेषताएं। वैदिक भाषा में दो अतिरिक्त व्यंजन ल और ल्ह है जिनका ड प्रयोग और ढ के स्थान पर किया गया है, जैसा इला और साहला। वेद में अनेक बार व्यंजनों से पूर्व उसी व्यंजन को अनुनासिक बनाकर युगल रूप में उच्चारण किया जाता है, तब उस व्यंजन को यम कहते हैं, यथा असिक्नि, चखनतुह, जग्मिवान और जघनतुह के क, ख, ग और घ से पहले अनुनासिक क, ख, ग, घ का उच्चारण होता है। संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण प्रायः द्वित्व रूप में होता है जिसको क्रम कहते हैं। यद्यपि इसके अनेक अपवाद भी हैं तथा स्तौत को अस्तौत, व्यामी को व्यामी और स्यंदंताम को स्यंदंताम उच्चारण करना चाहिए। अनेक बार स्वर भक्ति का प्रयोग करते हैं, यथा इंद्र को इंदर उच्चारण होता है। अनेक बार य और व से पहले उच्चारण में ई और उ आ जाता है, यथा वीर्यम को वीर्यम, स्व को सुवह उच्चारण किया जा सकता है। संधिगत विशेषताएं। वैदिक संस्कृत में संधियों के प्रायः वे ही नियम है जो लौकिक संस्कृत में है, परंतु वैदिक संस्कृत में उन नियमों का पालन उतना कठोर नहीं है तथा उनमें अनेक अपवाद हैं। ऋग प्रातिशाख्य में संधियों के नियमों को बताया गया है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर लौकिक संस्कृत की अपेक्षा संधि नियमों के अपवाद दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए ए और ओ के बाद अ का पूर्व रूप होना चाहिए, वेदों में कहीं होता है और कहीं नहीं भी होता है। उदाहरण के लिए सो अयमागात और ते वदनम में अ का पूर्व रूप हुआ है परंतु शिक्षांतो अव्रतम में नहीं हुआ। कहीं पर एक ही शब्द में पूर्व रूप होने और न होने दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं, यथा गावो नवंत में गावो के बाद अ का पूर्व रूप हुआ है और भावो अ में नहीं हुआ। अनेक बार संध्या नहीं होती और एक ही शब्द में दो शब्द निरंतरता से मिलते हैं, यथा ती त उ प्र उ ग गो ओ पशा रित गोरिजिक आदि शब्दों में संधि नहीं हुई। विसर्ग संधि में अनेक अपवाद देखे जाते हैं। अनेक बार संधि करने के लिए विसर्ग का लोप हो जाता है, यथा भूमि धन आददे भूम्यादे। दीर्घ स्वर के बाद न हो और उसके परे स्वर हो तो न का लोप और पूर्ववर्ती स्वर अनुनासिक हो जाता है, यथा महान धन इंद्र महाइंद्र। स्वराघात, वैदिक व्याकरण में स्वराघात का बहुत महत्व है। वेद मंत्रों के उच्चारण करने में और उनका अर्थ करने में स्वराघात को ध्यान में रखना पड़ता है। किसी भी शब्द पर विशेष बल डालकर उच्चारण करना स्वराघात या स्वर है। वैदिक मंत्रों में तीन प्रकार के स्वर होते हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। इनके नियमों को आगे विस्तार से बताया जाएगा। स्वराघात वैदिक भाषा की अपनी विशेषताएं हैं और इससे यह भाषा संगीतात्मक हो गई है। शब्दों में स्वराघात के परिवर्तित होने से अर्थों में भी परिवर्तन हो जाता है। ऋग्वेद के दो प्रकार के पाठों संहिता पाठ एवं पद पाठ में शब्दों के स्वर परिवर्तित हो सकते हैं। लौकिक संस्कृत में स्वराघातों का महत्व समाप्त हो गया था। तुलनात्मक भाषा विज्ञान में वैदिक भाषा के इस स्वराघात का बहुत अधिक महत्व है। धातु रूप, लौकिक संस्कृत की अपेक्षा वैदिक संस्कृत धातु रूपों के दृष्टि से बहुत अधिक संपन्न है। प्रतीत होता है कि ऋग्वेद के युग में आर्यों में बोली जाने वाली सभी विभाषाओं और बोलियों को वैदिक भाषा में सम्मिलित कर लिया गया था, क्योंकि एक प्रकार की ही धातुओं में अनेक अर्थ और रूप ऋग्वेद में दृष्टिगोचर होते हैं तथा उनके काल और विभक्तियों के अर्थ भी निश्चित नहीं है। धातुओं से लगाए जाने वाले प्रत्ययों में भी बहुत विविधता दृष्टिगोचर होती है। ब्राह्मणों के युग तक वैदिक भाषा का रूप बहुत कुछ नियमित हो गया था, क्योंकि उसमें यह विविधता कम हो गई थी तथा रूपों कालों और विभक्तियों का स्वरूप बहुत कुछ निर्धारित हो गया था। वैदिक भाषा में रूपों की विविधता क्री धातु के उदाहरण से जिसका प्रयोग बहुत अधिक हुआ है और देखी जा सकती है। मूल धातु क्री है, इसके करु कुरु रूप बनते हैं। करोति कुरुते अकरोत अकुरुतः आदि क्री का कर रूप भी बनता है। अकर्वम अक्री अकाशम करिष्यति अकरिष्यत कृधिकर करम करसि करसे करिष्यः आदि। क्री को चक्री में भी परिणत किया गया है। चकार चक्रे चक्रम अचक्रत चक्रिया चक्रिवम चक्राण आदि। क्री को कृण के रूप में लिया गया। कृणोति कृणुते अकृणोत कृणु कृणुष्व कृणवीत कुणवत कृणवत कृणवान। क्री के अन्य रूप भी बने। क्रियते कार्यति चकीर्षति चरिकृत करिकृत आदि। धातु के इतने रूप लौकिक संस्कृत में नहीं मिलते। इसके अतिरिक्त धातु रूपों की दृष्टि से वैदिक संस्कृत में कुछ नीचे लिखी विशेषताएं उदाहरण के रूप में दी जाती हैं। क, वैदिक संस्कृत में धातुओं के परस्मई पद और आत्मने पद होने के संबंध में विशेष नियम नहीं है। कोई भी धातु दोनों में प्रयुक्त हो सकती है। जैसे गम धातु लौकिक संस्कृत में परस्मई पद ही है, परंतु वेद में गच्छति गच्छते और जगाम जागे दोनों पदों के रूप हो सकते हैं। ख, वैदिक भाषा में लंग लुंग और लेट लगार का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता है, जबकि लौकिक संस्कृत में उनका प्रयोग भूतकाल में होता है। पाणिनि ने छंद से लुंग लंग लेटह सूत्र द्वारा इस नियम को बनाया है। जैसे अग्नि मध्य होतारम वृणितायम यजमानः का अर्थ है कि आज यजमान होता अग्नि का वर्ण करता है। यहाँ वर्तमान काल में अवृणित इस लंग लकार का प्रयोग हुआ है। ग, लौकिक संस्कृत में दस लकारों का प्रयोग होता है, परंतु वैदिक संस्कृत में लेट लकार अधिक है। लेट लकार का प्रयोग प्रायः भूतकाल में हुआ है, यथा संविता धर्म साविशत तारिशत जोशिषत पताति जीवाति भवाति ईशई आदि क्रियाओं का प्रयोग वेदों में ही मिलता है, परंतु अन्य अर्थों में भी लेट लकार हो सकता है। पाणिनि ने लिंग के अर्थ में लेट का विधान किया है। लिंगर्थे लेट अष्टा अष्टाध्यायी 3-4-7। घ, वेद में लेट लकार के अनेक रूप दिखाई देते हैं। सामान्यतः इसका प्रयोग सामान्य भूतकाल में किया जाता है, परंतु वर्तमान काल में भी इसका प्रयोग मिलता है। लेट के स्थान पर कानच अग्नि चिक्यान और क्वासु पशिवान जग्मिवान प्रयुक्त है। ग, वैदिक भाषा में शब के आगम और लोप के संबंध में विशेष नियम नहीं है। जैसे हानते और हनति एवं शेते और शयते दोनों प्रकार के रूप वेद में बनते हैं। च, लकारों के रूपों के संबंध में भी बहुत विविधता दृष्टि गोचर होती है। यथाकृत धातु लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में कृणोति कृणुते करोति कुरुते करति रूप बनते हैं। करति करत एक वचन, करतः द्विवचन, करंति बहुवचन रूप भी चलते हैं। लोट लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन में मसि और मध्यम पुरुष बहुवचन में तात तो और थन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। यथा कृणुतात शृणोत सुनोतन यतिष्ठन। छ वैदिक भाषा में प्रत्ययों की विविधता भी दृष्टिगोचर होती है। तुम उन प्रत्यय के अर्थ में इस प्रत्यय के अतिरिक्त से सेन असे असेन कसे कसेन अध्ययी अध्ययन कध्ययी कध्ययन शध्ययन तवई तवैंग तवेन ये 15 प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं। से सेन एजे कोष्ठक आने के लिए कोष्ठक बंद, असे असेन जीव से कोष्ठक जीने के लिए कोष्ठक बंद, कसे कसेन श्रेयसे कोष्ठक आश्रय पाने के लिए कोष्ठक बंद, अध्ययी अध्ययन उपाचराध्ययी कोष्ठक आचरण करने के लिए कोष्ठक बंद, कध्ययी कध्ययन आहुवध्ये कोष्ठक आह्वान करने के लिए कोष्ठक बंद, शध्ययी शध्ययन पिबध्ययी कोष्ठक पीने के लिए कोष्ठक बंद, तवई पातवई पिलाने के लिए, तवेंग सूतवे उत्पन्न करने के लिए, गवेन गंतवे जाने के लिए। ज नाम धातु बनाने के लिए य लगाया जा सकता है। यथा श्रवस्य गव्य नमस्य मुजाय समर्य वृषाय सुमनाय आदि। झ त्वा प्रत्यय अनेक स्थानों पर त्वी त्वाय या त्वीन के रूप में मिलता है। यथा हित्वी छोड़कर, युद्धवी युद्ध करके, शब्द रूप। वैदिक भाषा में शब्दों के रूप लौकिक संस्कृत की अपेक्षा यद्यपि अधिक भिन्न नहीं है, तथापि वैदिक शब्दों के रूपों में लौकिक संस्कृत की अपेक्षा विविधता है। वैदिक शब्दों की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। क अकारांत पुल्लिंग शब्दों के प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में आ और ओ को आ उच्चारण करने का उदाहरण द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया में स्पष्ट है। कोष्ठक देवा देवउ कोष्ठक बंद दोनों रूप मिलते हैं। बहुवचन में आह और आसह कोष्ठक देवाह देवासह, जनाह जनासह, मर्त्याह मर्त्यासह कोष्ठक बंद दो प्रकार के रूप बनते हैं। तृतीय विभक्ति के एक वचन में एन और एना देवेन देवना एवं बहुवचन में एह और ए भी देवही देवे भी रूप बनते हैं। ख आकारांत नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में आ और आन वना वनानी ये दो रूप मिलते हैं। ग आकारांत स्त्रीलिंग में प्रथमा के बहुवचन में आह और आसह रूप बनते हैं। घ एकारांत पुल्लिंग शब्दों के सप्तमी के एक वचन में आ और औ अग्ना अग्नौ दो रूप प्रचलित हैं। ग इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तृतीया के एक वचन में सूच्या सूची जैसे दो रूप बनते हैं। चतुर्थी के एक वचन में वृत्यय वृत्याह इस प्रकार से दो रूप बनते हैं। च एकारांत और उकारांत शब्दों के प्रथमा और द्वितीया के एक वचन में नद्यौ बध्वौ इस प्रकार के रूपों के साथ नदी और वधु रूप बनते हैं। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में नद्यः वध्वः के साथ ही नदी और वधु रूपों का प्रयोग होता है। छ उकारांत शब्दों का षष्ठी के एक वचन में मधोह मध्वः इस प्रकार से दो रूप एवं सप्तमी के एक वचन में मधो मधुनी मधुनी रूपों का प्रचलन है। ज बिना रूप परिवर्तन के भी विभक्तियां बन जाती हैं। किसी भी विभक्ति के किसी भी वचन के लिए प्रथमा विभक्ति के एक वचन का प्रयोग कर दिया जाता है अथवा मूल शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। शब्द के अंतिम स्वर को दीर्घ करने से अथवा उसमें आ जोड़ने से कुछ विभक्तियों के रूप निष्पन्न हो जाते हैं। झ वैदिक भाषा में सर्वनाम शब्दों के रूप लौकिक संस्कृत की अपेक्षा अधिक हैं, जैसे युष्मद् प्रथमात्वम् यूयम् युवम् तृतीय एक वचन त्वा त्वयाः द्विवचन युवाभ्याम पंचमी त्वद युवद युष्मद् षष्ठी द्विवचन युवोः सप्तमी एक वचन त्वे त्वयि बहुवचन युष्मे अस्मत् प्रथमा अहम् वाम वयम् द्वितीय माम आवाम अस्मान चतुर्थी एक वचन मह्यम् मह्य सप्तमी बहुवचन अस्मासु अस्मे तद प्रथमा द्वितीय विभक्ति द्विवचन ता तौ तृतीय बहुवचन तैः ते भी सप्तमी एक वचन तस्मिन् सस्मिन् इदम् तृतीया एक वचन अया अनया अदस् तृतीया एक वचन अयुया एनत् षष्ठी द्विवचन एनोह एनयो किम् प्रथमा एक वचन नपुंसकलिंग किम् कद तृतीया बहुवचन के भी स्वसप्तमी एकवचन स्वे स्वस्मिन् क्रिया विशेषण। ऋग्वेद में अनेक संज्ञाओं और सर्वनामों को क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है, यथा अना, इमाम, शश्वधा, अप्रायु, उपप्रिक, वामम वामम, देवी देवी आदि। वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास के दृष्टि से भी वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में कुछ भेद हैं। ऋग्वेद में संज्ञाओं के साथ श्रेष्ठता वाचक प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है, यथा कण्वतमः, मातृतमा, कवितरः। लौकिक संस्कृत में इन प्रत्ययों का प्रयोग विशेषणों के साथ ही किया जाता है। अनेक वाक्यों में एक अर्थ के द्योतक दो क्रिया विशेषणों का प्रयोग है, अनेक वाक्यों में क्रिया का प्रयोग नहीं है या उनमें व्याकरण के अनुक्रम की कमी है। कुछ वाक्यों में पूरक सर्वनाम नहीं है, यथा मंत्र में यह के बाद सह सर्वनाम आना चाहिए था, वह नहीं है। अनेक स्थानों पर एक संज्ञा में संलग्न दूसरी संज्ञा दी गई है जिसे रूपक ध्वनित होता है, जैसे 1.11.38 में अग्निम अत्रिम संज्ञाओं में अग्नि रूपी अत्रि अर्थ व्यक्त होता है। वैदिक संस्कृत में संज्ञा के अधिकारक उपसर्गों का स्वतंत्र पृथक प्रयोग बहुधा मिलता है, जैसे रोचनात् अधि 1.49.1, मानुषान अभि 1.48.7, अध्वरान उप 1.48.11, गिरिभ्यः आ 7.95.1, उत्तान पदह परि 10.72.3 आदि में है। वैदिक संस्कृत में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग लौकिक संस्कृत में यथा इम विचर्षणि उक्त उति उर्गिया सीम ऋग्वन आदि प्रयुक्त नहीं होते। वैदिक संस्कृत में अनेक शब्दों के अर्थ लौकिक संस्कृत में परिणत हो गए हैं। वेद में अराति का अर्थ कृपणता और शत्रुता दोनों है, लौकिक संस्कृत में इसका अर्थ शत्रु है। अरे ईश्वर का वाचक शब्द लौकिक संस्कृत में शत्रु अर्थवाची हो गया। वेद में वध का अर्थ भयानक हथियार है, लोक में मरना। मृडीग का अर्थ कृपा करने वाला था, पर लौकिक संस्कृत में इसका अर्थ शिव है। वेद में इव के अर्थ के लिए न का प्रचुर प्रयोग हुआ है, पर लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं के अर्थ में होता है। ऊपर वैदिक भाषा और लौकिक संस्कृत की भिन्नता को यत्किंचित दिखलाया गया है, यह केवल संकेत मात्र है। इन भाषाओं में भिन्नता के और भी अनेक उदाहरण और संकेत हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी के वैदिक व्याकरण से संबंधित अंशों से तथा सिद्धांत कौमुदी के वैदिक प्रक्रिया से इस संबंध में बहुत कुछ ज्ञात हो सकता है। पहले वैदिक भाषा सामान्य की बोलचाल की भाषा रही होगी, जिससे उस युग में ऋषियों ने वैदिक ऋचाओं का संकल्प किया। हजारों वर्षों की अवधि में भाषागत परिवर्तन होते रहे। पाणिनि के समय में जो भाषा शिष्ट जनों में व्यवहृत होती थी, उसको उन्होंने नियमों से बांधकर एक परिष्कृत रूप दिया। उसके बाद संस्कृत भाषा का रूप अविच्छिन्न रूप से उसी प्रकार चल रहा।